खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका चार बाप। आज हम उसकी पहली आयत से छठी आयत तक पढ़ेंगे और इस बाप को शुरू करेंगे कि खुदावंद का बंदा पालूस रसूल कलीसिया से, मसीह के बदन से, मसीह की दुल्हन से, जो मसीह की कलीसिया है, उनसे क्या चाहता है कि खुदा के साथ करें। सो इफ़सियों चार बाप उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, पस मैं जो खुदावन में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतने और हिल्म के साथ, तहम्बुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है, एक ही रूह, चिनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। यहां पर खुदावंत का बंदा पालूस रसूल चौथे बाप को शुरू करते हुए लफ्ज को इस्तेमाल करता है, पस मैं जो खुदावंत में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं। जब हम पस को देखते हैं तो पालूस रसूल क्यों पस का लफ्ज इस्तेमाल करता है, क्योंकि अभी अभी जो बात उसने खत्म की है के पास है, मंजर में उसने क्या कुछ कहा है, कौन सी दुआ की है, किन भेदों को वो बयान करके अभी मौजू को बदल रहा है। तो पालूस रसूल को जब हम देखते हैं, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हर एक किताब में लिखने वाले का एक मकसद है, सो पहले तीन अबवाब में इफ़सियों के खत में पालूस रसूल ईमानदारों को उस बच्चे की मानद पेश करता और कहता है कि तुम्हें बैठना सीखना चाहिए। जैसे हमने रोजमर्रा की जिंदगी से ये तीन बातें ली थी, बैठना, चलना और खड़े होना। तो आज पालूस रसूल कहता है, पस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं जिस बुलावे से तुम बुलाए गए। बुलावा क्या था कि मसीह यीशु में उन तमाम नेहमतों, बरकतों को, उसकी कुदरत को, उसकी मोहब्बत को, उसकी मेहरबानी को, उसके फजल को, उन आसमानी भेदों को, उस सुलह के पैगाम को, वो तमाम राजों को जो पुश्तों से यहां तक के फरिश्तों से पोशीदा थे, उन सब को जानो। सो पहले तीन बाब में पालूस रसूल ईमानदारों को कहता है कि मसीह यीशु में अपनी हालत, अपना दर्जा, अपना मुकाम समझो कि तुम कौन हो। आज इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी खतरे की बात है कि लोग अपनी पहचान नहीं जानते कि वो हैं कौन। आज जिस जदीद दौर में हैं, आज जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, लोग अपनी पहचान छोड़कर किसी दूसरे की पहचान अपनाना चाहते हैं। जैसे बच्चों को देखते हैं, बहुत से बच्चे जो फैशन करते हैं वो किसी और की पहचान लेकर अपने आप को धोखा देना चाहते हैं, कि कोई अदाकार बनना चाहता है, कोई डांस करने, नाचने, झूमने वाला बनना चाहता है, कोई इस तरह मैं बोलूं, कोई कहता है कि मैं इस तरह का हो जाऊं। और रूहानी आलम में भी बहुत दफ़ा लोग सोचते हैं कि मैं इसकी मानद हो जाऊं, मैं फलां खादम है वो ऐसे ऐसे काम करता है उसकी मानद हो जाऊं। अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन बहुत दफ़ा इन बातों के पीछे भागते भागते हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। और इस दुनिया का जो फरेब का ढोल बजाया जा रहा है, जैसे दानियल नबी के दौर में बजाया जा रहा था कि नबूकत नजर बादशाह ने बहुत बड़ा मुजस्मा बनाया और उसने पूरे शहर को कहा कि जो कुछ मैं कहूं उसके मुताबिक तुम्हें चलना होगा, जो तरीका मैं बताऊं वहां वही तरीके से तुम्हें इबादत करना होगी। नबूकत नजर बादशाह ने क्या किया, सोने का सोने के सोने से मंडा हुआ एक बहुत बड़ा मुजस्मा बनवाया और ऐलान ये पूरी रियासत में किया गया, पूरी उसकी बादशाहत में किया गया कि जब नरसिंगा फूका जाए तो जहां कहीं भी जो कोई हो वो सजदे में गिर जाए, वो उसकी इबादत में उसके एहतराम में। नबूकत नजर ने अपना मुजस्मा बनाया कि उसे खुदा जाने। सब लोगों ने, जितने यहूदी जो बाबल में गए थे कैद करके गुलाम बनाकर, उनको ले गए और उन्हों को क्या किया गया, कहा गया कि अगर तुम ना करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा और तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा उस कैदखाना में, और अगर तुम बादशाह की इबादत करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, खाने के लिए पीने के लिए ऐशो इशरत और सब कुछ मिलेगा। सादा लफ्जों में कि अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक अपनी पहचान भूलकर, उस जिंदा खुदा को भूलकर, यहूदियों से उसने कहा कि उस जिंदा खुदा को भूलकर मुझे खुदा जानो तो तुम्हें बहुत सी अच्छी नेमतें मिलेंगी। तो पालूस रसूल बेशक कैदखाना में है कि मैं खुदावन में जो कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो। आज सबसे जो बड़ा खतरा है, खा कोई मसीही है खा कोई और है, लोग अपनी पहचान भूलकर अबलीस की दी हुई पहचानों पर, शिनाख्त पर, नामों पर और उसकी मजेदार बातों में ज्यादा सुकून करना पसंद करते हैं। अगर हमें ये बात हम खुद जानते हैं और बहुत दफा सुनने में आती है कि फलां बहुत ही खूबसूरत है, मैं उसके मानत बनना चाहता हूं बनना चाहती हूं, बजाय के खुद की खूबसूरती को, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सारा इब्राहिम की बीवी गालबन 75 बरस की थी जब वो फराउन की नजर के सामने आई, तो फराउन का दिल उस पर आया और वो 75 बरस की थी। 75 साल की औरत थी। क्यों वो खूबसूरत थी? इसलिए नहीं कि वो सोने चांदी से लदी हुई थी, इसलिए नहीं कि उसने कोई और चीज खा ली थी जिससे वो खूबसूरत थी, सिर्फ एक बात से कि वो अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के कलाम को जगह देती थी। उसने अपनी जिंदगी में जो आला दर्जा दिया था वो खुदा के कलाम को दिया था। तो खुदा का कलाम नूर है, वो ना हमें सिर्फ नूर में चलाता है बल्कि हमें मसीह के हम शक्ल बनाता हुआ बहुत ज्यादा जिस्मानी और रूहानी तौर पर बरकत भी देता है। सो हमें इस जहां के हम शक्ल बनने की जरूरत नहीं, हमें अपना मुकाम, अपना दर्जा, अपनी बुनियाद, अपनी तमहीद, अपनी शुरुआत को याद रखने की जरूरत है। इसीलिए पालूस ने कहा, पस मैं जो खुदावन में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं। इल्तमास उसका करने का, दरखास्त उसका करने का मतलब, उसकी मिन्नत करने का जो मकसद है यही है कि पिछले तीन बुआब में और खास खास बात 14वीं आयत से 21वीं 19वीं आयत तक जो उसने दुआ की है, जो चीजें मांगी हैं, वो कहता है कि पस उन पर जरा गौर करो कि अभी मैं क्या कह के हटा हूं, अभी मैंने क्या कहा है। और उसने क्या कहा था, अपनी बातनी इंसानियत में जोरावर बन जाओ, मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, तुम उसकी मोहब्बत को जान सको और सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ, और उसकी कुदरत जो तुम में तासीर करती है, उसके कुदरत के बायस उसकी तमजीद और उसके नाम की तारीफ करते रहो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में आमीन भी हो कि वाकया ही ये सच है। और इसलिए वो कहता है, पस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अब तुमने सब कुछ सीख लिया है, अब तुमने सब कुछ जान लिया है कि खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर किस लिए आया, क्यों मरा, क्यों वो आसमान पर उठाया गया और वहां से वो वापस आएगा, और तुमको मसीह यीशु में क्या कुछ हासिल है। आज बहुत दफा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मसीही बहुत दफा फिल्म की कहानी को याद रखते हैं लेकिन खुदा के वादे को भूल जाते हैं जो छोटा सा होता है। खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, खुदावन ने कहा मैं तुम्हें यतीम और तन्हा ना छोड़ूंगा। सो पालूस कहता है कि तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे, हमारा बुलावा क्या है, तुम मसीह यसू में दौलतमंद हो, तुम मसीह यसू में बेऐब हो, तुम यसू मसीह में जो पहले जुदा थे अब उसके नज़दीक हो, तुम यीशु मसीह में फजल के बायस निजात पा गए हो, तुम अब परदेसी और मुसाफर नहीं रहे बल्कि मुकदसों के हम वतन हो गए, तुम उसकी कलीसिया हो, तुम उसका बदन हो। ये बुलावा है कि इस नाम से खुदावन खुदा ने तुमको बुलाया कि उसके लायक चाल चलो। इन आने वाले तीन अबवाब में, चौथे बाब से लेकर पांचवें बाब की हम, छठे बाब की हम, नौवीं आयत तक इसी बारे में सीखेंगे चलना, कि हम किस तरह चलते हैं, हमारी जिंदगी किस तरह हर रोज गुजरती है। चलने का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, चाल चलो, इसका मतलब है कि किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। वो सब कुछ जो हमें जानने के लिए मिल गया है, वो सब कुव्वत जो हमारे लिए मौजूद है, वो सब वादे जो ला तब्दील यानी के बदलने वाले वादे नहीं हैं, वो तमाम नेहमतें जिनमें खुदा कभी भी कमी नहीं लाएगा। तो पालूस कहता है कि अब हमने जान लिया है, सो अब हम कैसे उस बुलावे के लायक चाल चलेंगे। इसलिए हमें हर दिन अपने आप को जांचने की, देखने की जरूरत है कि पालूस रसूल कहता है कि हमारी चाल कैसी होनी चाहिए। इसी बाब में हमें बहुत से हवाला जात मिलेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर 17वीं आयत में पालूस रसूल कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में जताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। फिर पालूस रसूल 22वीं आयत में कहता है कि तुम अपने अगले चाल चलन को उसकी पुरानी इंसानियत को उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेबों की शहवत से खराब होती जाती है। फिर पालूस रसूल 5वें बाब की पहली और दूसरी आयत में कहता है, पस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानत बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारे वास्ते हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानत खुदा की नजर कुर्बान किया। फिर 7वीं आयत में कहता है, क्योंकि तुम पहले तारीखी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, पस नूर के फरजंदों की तरह चलो। फिर कहता है 15वीं आयत में, پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانت چلو، دناؤں کی مانت چلو۔ اور آگے پھر وہ محبت کے بارے میں، مسیحی زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے، جو اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، چلنا یعنی کہ زندگی گزارنا۔ سو آگے چل کر ہم دیکھیں گے، آج صرف یہ باتیں آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جنہوں نے پہلے 400 پیغام سنا ہے اس پہلے 3 ابواب میں سے، ان سب 400 پیغام کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، پالوس کے 3 باب لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جانیں ہم کون ہیں، ہم جانیں ہمارا مقام یسوع مسیح میں کیا ہے، ہم جانیں ہمیں یسوع مسیح میں کیا کچھ حاصل ہے، ہم جانیں کہ وہ وفادار ہے، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی فقیر اور کوئی بھی دوسرا جو وعدے کرتا ہے، جو ہم سے مانگتا ہے، وہ وفادار نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کلیسیا جانے کہ مسیح نے اپنی قربانی دی، لیکن اس دور کے لوگ ہم سے قربانی مانگتے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو پھر میں تمہارے لیے یہ کروں گا۔ ہم جانے ہم کون ہیں، ہماری حالت، ہمارا مقام، ہمارا درجہ اور ہمارے لیے کون سی نعمتیں، برکتیں موجود ہیں۔ اور آگے وہ اسی سلسلے کو شروع کرتا ہے کہ اب زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اب تم اس سچ سے واقف ہو، اس لیے تم خدا کے حضور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا کہ کس طرح چلتے ہو۔ سو آگے چل کر ہم سیکھیں گے، اس لیے آج کے دن میں غور کریں کہ ہم کس طرح چلتے ہیں۔ اور یہ خدا کے کلام میں سے بہت ہی خوبصورت سچ ہے، زبور 119 اس کی 105 آیت میں خداوند خدا اپنے کلام میں کہتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ سو آئیں ہم خداوند کے حضور جھکیں اور آج یہی جپتے رہیں کہ خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تیرا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، تیرا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری پہچان، ہماری شناخت، ہمارا مقام، ہماری نعمتیں اور برکتیں اور حق اور میراث یسوع مسیح میں کیا ہے۔ لشکروں کے رب، ہر ایک جان، جیسے پالوس نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سوائے ان زنجیروں کے جن میں جکڑا ہوا ہوں، ہر ایک مسیح کو قبول کر لے اور مسیح کا غلام ہو جائے۔ سو خدا باپ، اس کلیسیا میں روح کی آگ لگا دے تاکہ ہر ایک یرمیہ کی طرح چلا اٹھے، یرمیہ کی طرح تجھے پکارے۔ ہم سب کو روح کی آگ زور بزور روز بروز لگا خداوند، تاکہ زور بزور میں طاقت با طاقت تیرے حضور خداوند خدا بڑھتے جائیں اور طاقت پر طاقت پاتے جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں۔